ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा को रचयिता कहा जाता है और रचयिता ही अपनी रचना का भेद बताते हैं। रचना का भेद रचयिता के सिवाय और कोई बता नहीं सकता, तो शिव बाबा भी बेहद का रचयिता है और ये उसकी बेहद की रचना है। तो बेहद का रचयिता अपनी बेहद की रचना का परिचय खुद ही देते हैं, इसलिए शिव के लिए क्या कहते हैं, अगम निगम का भेद वही बताते हैं। अगम और निगम, आना और जाना, हम कैसे आत्माएं आती है, कैसे फिर जाती है, कैसे यहाँ पाठ बजाती है, कैसे यह खेल चलता है, इसका भेद भगवान के सिवा और कोई बता नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी गत मत तू ही जान, कैसे गति करते हैं, उसकी मति मत क्या देते हैं, कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, ये उसके लिए मत परमात्मा ही देते हैं। तो आज बाबा ने वो मत दी है, अपनी रचना का भेद खोला है। इस भेद को हम क्या कहेंगे, ये खेल है। वैसे भी मानते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसमें एक्टर है, अभिनेता है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। लेकिन वो कैसा ये खेल है ये बाबा कहते कोई नहीं जानता, तो मैं ही आकर के बताता हूँ। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को अपनी रचना का भेद बताते हैं। और क्या बताते हैं, बच्चे इस खेल में सब आधा आधा है, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, आधा कल्प तो आधा और आधा, ये इस खेल की गुह्यता है। या कहेंगे कि कैसे पहले भी फिल्में होती थी ना, तो आजकल तो पता नहीं, लेकिन पहले बताते थे ना कि फिल्म जब होती थी हीरो हीरोइन होता है, फिर आधा ये इंटरवल से पहले तक तो बहुत खुशियां ही खुशियां हैं, सुख ही सुख है, और इंटरवल होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है उसका दूसरा भाग, तो फिर विलियन आता है, खलनायक आता है, और खलनायक आकर के वो कैसे विघ्न डालता है, और विघ्न डालता है तो फिर आधा भाग वो विघ्न कैसे हीरो हीरोइन अनुभव करते हैं, और अंत में वो खलनायक मर जाता है और फिर हीरो हीरोइन जो अभिनेता अभिनेत्री है वो फिर उसी पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो ये भी एक खेल है। तो बाबा कहते हैं इसमें हर एक खेल खेल रहा है, और ये मैदान भी है, तो खेल में सदा हार नहीं होती, खेल में सदा जीत नहीं होती है, कभी जीत है कभी हार है। तो इसलिए बाबा कहते इसको उस खेल के रूप में देखो तो कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि खेल है ना। तो खेल शब्द अगर याद किया तो कभी दुख नहीं होगा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन मियां मिठू बन जाते हैं। क्या मियां मिठू बन जाते हैं, और क्या कहते हैं, मैं तो संपूर्ण हो गया, मैं तो संपूर्ण हो गया। वह संपूर्ण हो गया अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं तो पूरा हो गया, पावन बन गया, क्योंकि संपूर्ण हो गए होते तो फिर इस शरीर में नहीं रहते। शरीर में है इसका मतलब संपूर्ण नहीं है। तो बाबा कहते वो पुरुषार्थ हमको अंत तक करना है, संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बन गए तो संपूर्ण दुनिया चाहिए। तो आज बाबा ने कहा मियां मिठू मत बनो, पुरुषार्थ पूरा करो, मियां मिठू बनकर कई समस्या बस हो गया, मैं पास हो गया। तो आज बाबा ने सावधान भी किया है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14/4 2025 है। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। इसलिए शिव के लिए क्या कहते हैं, हर हर महादेव है। वास्तव में ये शिव बाबा की महिमा, हर माना दुख हरने वाला। तो शिव बाबा आकर सबका दुख हरते हैं। सो सच्चा हरि, हरि भी परमात्मा को कहते, पर फिर वो विष्णु के लिए कह देते हैं, श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, पर है वास्तव में शिव बाबा। तो हर हर महादेव अर्थात सबसे ऊंचा शिव बाबा, वही आकर के सबका दुख हरते हैं। तो हरि भी वही है। तो आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियां मिठू बनते हैं? कौन सी बात में अपने को, अपने दिल को खुश कर मियां मिठू बनते हैं? उत्तर, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए हैं, हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं, ये भी मियां मिठू बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। कोई भी ये न समझे मैं तो पास हो गया हूँ, मैं तो संपूर्ण बन गया हूँ, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए, फिर पति दुनिया में थोड़ी रह सकेंगे। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। अब हम संपूर्ण बन गए, हम चले जाएंगे परम धाम, ये तो होगा ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही, उसमें तो बहुत, उसमें तो अनेक चाहिए। एक एक संपूर्ण होने से क्या होता है? बाबा भी देखो संपूर्ण बने ब्रह्मा बाबा, लेकिन अभी तक परम धाम तो नहीं गए है ना, पतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यही कहते ना, बच्चे साथ में चलेंगे। तो राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है, कौन कह रहा है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, आत्मा कहती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सभी मनुष्य है, आत्मा कहो मनुष्य कहो, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट हो राजा रानी हो, सब मनुष्य है। कितना भी बड़ा पद उसको मिल जाए लेकिन है तो मनुष्य ना। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे क्या कहते हैं, परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है, आत्मा रूप में भाई भाई परम धाम में, फिर नीचे आते हैं ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, तो फिर ये ऊंच नीच ये सब कुल बनते हैं, भाई बहन बनते हैं। आत्माएं तो सभी आत्मा हैं, ये भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। तो तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को कोई भी नहीं जानते है ना, भटक ही रहे हैं ढूंढ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान हे मात पिता, क्योंकि ऊंच से ऊंच तो एक होना चाहिए ना, वो है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। तो सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो क्या समझते है सुख दुख के लिए, हाँ बाबा कहते हैं ये खेल है सुख दुख का, आधा और आधा है। और मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है अभी अभी दुख है, फिर कहते अभी अभी स्वर्ग है अभी अभी नरक है, सुख है तो हम स्वर्ग में है दुख है तो नरक में, अभी अभी ये सब। अब ये नहीं समझते कि आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो तो होना ही है। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहां सब सच्चा सोना है, सब आत्माएं पावन है, संपूर्ण है, तो इसीलिए सच्चा सोना है। एलॉय उसमें हो न सके, परम धाम में एलॉय नहीं है आत्माओं में। हाँ, और तो सृष्टि मंच पर आते हैं तो भी सुख मिलता है तो कहेंगे वो आत्मा पावन आती है। धन अपना अपना पाठ भरा हुआ है परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है परम धाम में। अपवित्र आत्मा तो रह नहीं सकती है परम धाम में। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके, कोई भी नहीं है जो कहे मैं तो संपूर्ण हूँ, मैं तो संपूर्ण पवित्र हो गया हूँ। कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो, बन नहीं गए हो, बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो, वो है संपूर्ण निर्विकारी। देवता माना संपूर्ण निर्विकारी, हम नहीं कहला सकते देवता क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे, भल कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी महान आत्मा हो, कोई भी हो, बाबा कहते कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसको भी नहीं कह सकते हैं संपूर्ण निर्विकारी। क्यों बाबा कहते ये भले पावन बनता है लेकिन संपूर्ण निर्विकारी नहीं, क्योंकि शरीर तो फिर भी विकारी रचना है। तो ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से, ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। हाँ, ये दूसरा भेद कि ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं तो फिर आते हैं, बचपन में ही आ जाते हैं, आकर के सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा, 6-8 साल का बच्चा है तो कोई कोई भी अच्छी समझ भी आ जाती है। हाँ, 6-8 साल वाले बच्चे में भी अच्छी अच्छी समझ आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, पूर्व जन्म में उसने ज्ञान लिया था और फिर शरीर छोड़ा तो वो आत्मा तो वही है। तो जैसे ज्ञान के संस्कार उस आत्मा में हैं, तो 6-8 साल की उम्र में भी वो जैसे ज्ञान समझ लेता है, आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। छोटे बच्चों को भी ये महसूस होता है हमको फिर से ये ज्ञान बाप का मिल रहा है, अंदर में खुशी होती है। औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी औरों को सुनाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं, वो संस्कार उनमें है तो बचपन से जैसे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसे कई ऐसे बहने हमारी टीचर्स बहने अनुभव सुनाती है, मैं माँ के साथ आती थी, 5 साल की थी, 6 साल की थी, छोटी थी बहुत, और माँ के साथ आती रही और बचपन से मैं कहती मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। हाथ उठाओ टीचर जब बचपन से ही आ गई। देखो कई टीचर्स होंगे, अभी यहाँ तो थोड़ी बैठी है, और भाई भी सो गए जो बचपन से ही आ गए माँ बाप के साथ, हाथ उठाए, हाँ बचपन से ही आ गए। हम भी बचपन से आ गए थे, मैं भी 8 साल की थी जब श्रुताई 10 साल की थी आ गई, तो बस तब से जैसे ही बाबा की बनी हो गए 10 साल सही बाबा के। तो इसीलिए कई ऐसे हैं और बचपन से ही फिर ज्ञान देना शुरू किया, तो बाबा कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो बाबा मिसाल किसका देते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार का। जैसे लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में उसी काम में खुशी से लग जाते हैं, वो कहेंगे अपने मम्मी को, मम्मी मुझे बंदूक चाहिए, बंदूक चाहिए। भाई बंदूक क्यों चाहिए? हाँ भले टॉय गन देंगे उनको लेकिन बंदूक बहुत अच्छी लगती है, और सब खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार है। तो बाबा कहते तो छोटेपन में उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है, तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया का मालिक बन सकते हो, दो ऑप्शन है, एक तो नई दुनिया का मालिक बन सकते हो या फिर शांति धाम का मालिक बन सकते हो। फिर द्वापर युग में आएंगे, आधा कल्प तो शांति धाम का मालिक बन सकते हैं। तो अभी अपने आप से पूछो, क्या बनना चाहता हूँ, सुख धाम का मालिक बनना चाहता हूँ या शांति धाम का मालिक बनना चाहता हूँ। तो तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया का मालिक बन सकते हो या शांति धाम का मालिक बन सकते हो। शांति धाम तो तुम्हारा घर है, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने, ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तो क्या पता उनको कि हम शांति धाम से आए हैं, वो तो समझते हैं यहाँ ही जन्मे हैं, यहाँ ही मर जाएंगे। तो क्या पता कि हम आत्मा हैं, आत्मा का तो पता ही नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़ी पता था क्या कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, पता ही नहीं था। हम बिंदी है, ये पता था कि हम बिंदी है। संन्यासी लोग भी भल कहते हैं प्रकृति के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी हाँ भले ये कहते हैं, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। आत्मा समझते हैं फिर शालिग्राम समझते हैं, या परमात्मा कहते हैं फिर इतना बड़ा लिंग समझते हैं, तो बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं, आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं, पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। तो बाप कहते हैं ये सारा ज्ञान है, अथॉरिटी के बोल है कि इतना सारा यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर रात को तोड़ देते हैं, फिर सुबह को सब फिर से नए सिर बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, या जो भी करते हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं ये सब अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। ज्ञान भगवान के सिवा और कोई सुना नहीं सकता। ये कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है परमात्मा भी बिंदी है, ये कोई नहीं कहता। और वो तो क्या कह देते हैं, कहते हैं परमात्मा तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ही परमात्मा कह देते हैं, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। मैं आत्मा हाँ उसका बुदबुदा हूँ, अंश हूँ, फिर मैं अंश जा करके उस सागर में मिल जाऊंगा, ब्रह्म में मिल जाऊंगा, इसलिए खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, वो अंश बन करके आते हैं, छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, उस ब्रह्म बड़े ब्रह्म से वो ज्योति है महाज्योति, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं, अंश बन के आते हैं और फिर वापस जाकर उसमें लीन हो जाते हैं। अच्छा बाबा कहते हैं लीन हो गए फिर क्या, चलो लीन हो गए तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, लीन हो जाने का मतलब क्या हुआ, पाठ भी लीन हो गया, तो उसका फिक्स्ड पार्ट तो फिर हुआ नहीं, फिर पार्ट भी लीन हो गया, फिर आत्मा तो अविनाशी हो गई, फिर अविनाशी तो रही नहीं। तो बाबा कहते हैं हाँ ये सब जो कुछ कहते हैं ये क्यों कहते हैं, क्योंकि सचमुच परमात्मा का ज्ञान उनको नहीं है। फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं, अब लीन हो जाए फिर तो फिर क्या, पार्ट भी लीन हो जाए तो कितना रॉन्ग हो जाता है, कितना बड़ा अंतर है ये। हाँ अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आ जाते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, ना खेल है जीवन मुक्त और जीवन बंध, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए शिव बाबा को क्या कहा जाता है, जीवन बंध को जीवन मुक्त बनाते हैं, इसीलिए बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी ही याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। अगर उस एक की याद नहीं होगी, अनेकों को याद करेंगे तो पावन बन नहीं सकेंगे। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं, अब बताओ बाबा बच्चों पर आते हैं, हाँ बाबा कहते हैं तभी बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। कई बच्चे समझते हम तो संपूर्ण बन गए, हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। कई बार बाबा पूछते हैं ना कौन तैयार है घर चलने लिए, तो सब हाथ उठाते। फिर बाबा पूछते अच्छा तैयार हो गए हो, तो फिर तैयार हो गए हो घर चलने लिए तो क्या संपूर्ण बन गए हो? बिना संपूर्ण बने घर चले जाओगे तो ऐसे कैसे घर जाओगे? सजाएं खानी पड़ेगी, तो सजाएं भी नहीं खानी है और घर भी जाना है, तो संपूर्ण तो बने नहीं है, तो बनना होगा। तो बाबा कहते हैं हम कंप्लीट तैयार हो गए, कहीं समझते हैं ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियां मिठू बनना है। हम एक बताते ना मियां मिठू, मियां जी के पास एक तोता था, वो मियां जी अपनी बहुत बड़ाई करता था, मैं ऐसा, तो वो मिठू जो उनका तोता था वो भी सीख गया, वो भी कहने लगा मियां मिठू बन गया, तो मियां का मिठू होगा, तो इसीलिए वो अपनी बढ़ाई करने लगा। वो कहा मियां कहा वो कहा वो तोता, लेकिन सीख गया ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मियां मिठू नहीं बनना है। यहाँ भी मियां मिठू बनना है। बाप कहते हैं तो ये भी मियां मिठू बनना हो गया, आपकी दिल को खुश कर लेते हैं कि मैं तो संपूर्ण बन गया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके, कोई कितना भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं, फिर भी कुछ न कुछ रह जाएगा। वो तो अंत तक पुरुषार्थ करते रहना है। राजधानी स्थापन होनी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना अलबेला बनना है, ढीला हो जाना, अभी थोड़े बनेंगे संपूर्ण, अंत में बनेंगे, और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है उसमें, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए तब तो अंत में संपूर्ण बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं भले कोई स्टूडेंट कई कितना भी कोशिश करे कोई कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, कितना भी होशियार हो जाए, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना, ऐसे थोड़ी अभी इम्तिहान आया ही नहीं और कहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ और मुझे अभी ट्रांसफर कर दो ऊपर के क्लास में, वो तो होगा नहीं। जब तक इम्तिहान आए, इम्तिहान में पढ़ाई वो इम्तिहान देवे, तभी तो ट्रांसफर होगा, पहले कैसे ट्रांसफर होगा? तो बाबा कहते हैं भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना, इम्तिहान तो जल्दी हो न सके। ये भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह न सके हम कंप्लीट तैयार हैं, कोई कह नहीं सकता हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई भी आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है, अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। मियां मिठू नहीं बनना है, ये तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ इतना समझते हैं राजधानी स्थापन होनी है, अभी हुई नहीं है, संपूर्ण नहीं बने हैं, पर कितना पर क्या समझते हैं? इतना तो समझते हैं कि थोड़ा टाइम बाकी है, ये तो समझना ही नहीं कि बहुत टाइम पड़ा है, कि थोड़ा टाइम बाकी है। मूसल भी निकल गए हैं, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। कोई भी मिसाइल्स बनाते हैं तो पहले तो कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, कोई भी नया आविष्कार होता है मेहनत लगती है, फिर एक बार वो हो गया आविष्कार, उसको यूज किया, सफल हुए तो फिर फटफट बनाते रहते हैं, तो फिर झट बना लेते हैं। हाँ पहले प्रैक्टिस पहले तो टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नोंद है। इतने मिसाइल्स बनाते जा रहे बनाते जा रहे हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है, पेट से मूसल निकाला अपने यदवंश कुल का नाश किया, तो गीता में भी मूसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। हाँ कितनी कहानी है, ये सब झूठी बातें है ना। ये कोई पेट से मूसल निकलने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से मिसाइल निकला, और बुद्धि है बुद्धि, लेकिन उसको उसकी भेंट पेट से कर दी है। जैसे भी दुनिया में कहते किसी को कोई बात सुनाते हैं सीक्रेट, फिर इसको पेट में रखना, किसी को बताना नहीं, तो सीक्रेट है। तो ये भी पेट में मूसल रखा पर है, तो बुद्धि की बात। तो बाबा कहते हैं, बाप आकर समझाते हैं, हाँ फिर ये हुआ, ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल कहा जाता है, मूसल माना मिसाइल। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे, भारत को सच खंड कहते हैं ना, अब तो झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो आत्मा सच्चा सोना थी, अब झूठी हो गई आत्मा भी ना, खाद पड़ते पड़ते। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, सच्चित आनंद स्वरूप कहते थे, पर वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, वो बीज रूप है। बाबा कहते उस रूप से नहीं समझते थे, आगे तो सिर्फ गायन करते थे। अभी तुम समझते हो कि बाप सारे की बाप अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। जितने भी बाबा के गुण हैं, शिव बाबा हमारे अंदर वो गुण भर रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वो क्या आकर करेंगे। तो पतित पावन आओ, पतित पावन आओ पुकारते, अच्छा पतित पावन आएगा तो क्या करेगा, तो क्या आकर करो, तो क्या आकर करेंगे ये तो जानते नहीं है। हाँ चलो पतित से पावन बनाएंगे कह देंगे, पर कैसे बनाएंगे बाबा कहते वो तो कोई भी नहीं जानते। अभी पतित से पावन, पतित पावन आओ, परंतु वो क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते हम। अब एक सीता की तो बात नहीं है ना, एक सीता तो नहीं होगी जिसके लिए राम आएगा, रावण की जेल से छुड़ाएगा। एक सीता की तो बात ही नहीं है, तुम सभी सीताएं हो, मेल्स भी सब सीताएं है ना, क्योंकि रावण की जेल में तो सारी दुनिया पड़ी है, तो सब मेल्स चाहे फीमेल सब सीताएं हैं, रावण की जेल में पड़ी है। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। तो बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो, क्या जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। हाँ भाई क्या समझेंगे, सीता समझते अपने आप को या समझते नहीं मैं तो मेल हूँ। तो मेल हो तो माना राम थोड़ी हो, राम तो एक शिव बाबा है, आत्माएं सब सीताएं हैं। कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में हैं। तो बाप वो राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। अब रावण कोई मनुष्य तो नहीं है, ये समझाया जाता है। किसको कहेंगे रावण, ये समझाया जाता है हर एक में पांच विकार हैं, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है इस दुनिया का। हाँ, रावण राज्य को क्या कहेंगे, विशियस वर्ल्ड, विकारी दुनिया, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। अब दोनों अलग अलग नाम है ना, दुनिया ही विशियस बनती है, दुनिया ही वाइसलेस बनती है, विकारी बनती है, फिर निर्विकारी बनती है। ये दोनों अलग अलग नाम है ना, ये वैशालय और वो शिवालय। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, इनों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं, ये भी तुम जानते हो। क्या जानते हो, कि मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं है, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना, राम राज्य रावण राज्य ये कब से शुरू करे, मुंझारा कर दिया है, लंबी आयु कर दी है कल्प की, तो मुंझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम 84 का पाठ बजाकर फिर क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सत्युग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वहां भी कोई बीच से वापस घर नहीं जा सकता है, पुनर्जन्म लेते हैं सत्युग त्रेता में भी, वो है राम राज्य। फिर रावण राज्य में आना है, ये हार जीत का खेल है, खेल है हार और जीत का। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। क्या है इसका राज के हार जीत के खेल का, कि जब तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग का मालिक बनते हो, फिर हार खाते हो तो नर्क का मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अभी तुम थोड़ी कहेंगे, अभी यज्ञ में कोई भी शरीर छोड़ता हम थोड़ी कहेंगे कि ये आत्मा स्वर्ग में गई, लेकिन हम क्या कहते हैं कि आत्मा दूसरा पाठ बजाने दूसरे शरीर में गई। लेकिन ये जरूर कहते हैं ना, जो यहाँ संस्कार इनके थे या जो भी पुण्य कमाया वो पुण्य आत्मा अपने साथ ले गई अगले जन्म के लिए, लेकिन स्वर्ग गई ये तो हम नहीं कहते ना। तो बाबा कहते हैं कोई मरते हैं तो दुनिया में कहते स्वर्ग पधारा, अब तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा, अभी है ही नहीं स्वर्ग तो स्वर्ग कैसे गया। तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा, वो तो कह देते हैं ज्योति जो समाया व निर्वाण गया। कोई साधु सन्यासी महात्मा गुरु वो कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनके लिए नहीं कहेंगे स्वर्ग पधारा, उनके लिए क्या कहेंगे, ज्योति ज्योत समाया, या कहेंगे ब्रह्मलीन हुआ, ज्योति ज्योत समय पर। जो गृहस्थी जो है उनके लिए कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया व निर्वाण गया, तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है, स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है, अभी है नर्क। भारत की ही बात है, स्वर्ग नर्क की बात जानती है वो भारत की बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। वो तो दिखाते ना स्वर्ग ऊपर है, और वो क्या निशानी बताते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में, दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग ऊपर दिखाया है छत में। तो बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो, तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, फिर यहाँ ही नर्कवासी बनते हैं, अभी फिर स्वर्गवासी बनना है, ये नॉलेज है ही, स्वर्गवासी बनना है तो ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, क्योंकि नर से नारायण कैसे बनेंगे, ज्ञान से नॉलेज से तो स्वर्गवासी बनेंगे, ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्य नारायण की ही सुनाते हैं, सत्य नारायण बनने की सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं कहते हैं। राम सीता की कथा तो चलो रामायण कह देंगे, लेकिन सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा, वो तो शिव बाबा ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते हैं, ये है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंच से ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वो फिर भी दो कला कम हो जाती है। श्री राम श्री सीता उनकी वो त्रेता युग में है, बाबा कहते हैं वो फिर भी दो कला कम हो जाती है, लेकिन ऊंचते ऊंच तो श्री लक्ष्मी नारायण कहेंगे, तो नर से नारायण शब्द कहते हैं, नर से श्री राम शब्द नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो फिर भी दो कला कम हो जाती है। तो पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने के लिए किया जाता है ना, स्टूडेंट्स भी पहला नंबर आऊं, फर्स्ट नंबर आऊं, यही पुरुषार्थ करेंगे। कैसे नहीं, कोई बात नहीं, पांचवा छठा नंबर आऊं तो कोई बात नहीं, नहीं फर्स्ट आऊं, तो फर्स्ट का ही पुरुषार्थ करना होता है। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं, हाँ ऊंच पद वो फर्स्ट नहीं बन सकते हैं, तो फिर जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को ही भूल जाते हैं। यहाँ कैसी विडंबना, केवल भारतवासी जो देवी देवता धर्म के हैं वो ही अपने धर्म को भूल जाते हैं, बाकी और धर्म वाले नहीं भूलते हैं। क्रिश्चियन भल सतो से तमो प्रधान बनते हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना, वो अपने धर्म को तो नहीं भूलते ना, लेकिन भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, ये भी नहीं समझते हैं, हाँ हिंदू कहते हैं पर ये नहीं समझते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के, सनातन शब्द कहते हैं सनातन धर्म के हैं, लेकिन सनातन देवी देवता ये शब्द नहीं बोलते हैं, केवल सनातन कहते हैं। तो फिर सनातन के बाद फिर हिंदू शब्द जोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो मूंज जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, जिनकी पूजा करते हैं उसी धर्म के ही ठहरे ना, परंतु समझते नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं, हाँ कोई कोई यथार्थ रीति जानते हैं, स्कूल में भी कोई स्टूडेंट्स की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है और कोई की बुद्धि में कम बैठता है, यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, नापास होते हैं तो क्षत्रिय कहा जाता है, चंद्रवंशी में चले जाते हैं, दो कला कम हो गई ना, संपूर्ण तो बन न सके, तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, केवल द्वापर युग से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, 2500 साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके पहले की कहते हैं वो पूर्व था बताते थे, और वो कई इतने आंकड़े देंगे, लेकिन जो हिस्ट्री है वो आधा कल्प की हिस्ट्री है। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अब वो कोई एक तो आधा कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दूसरा वो कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी थोड़ी जानते हैं, एक तो इस सृष्टि का भी केवल आधा कल्प ही जानते हैं, और दूसरा दूसरे लोग जो है सूक्ष्म वतन मूल वतन उसको तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं, साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में आत्माएं रहती है, ये है स्थूल वतन, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, हाँ सारी नॉलेज आ गई है, ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, कौन हो सब, स्वदर्शन चक्रधारी सेना, सेना बैठी है, स्वदर्शन चक्रधारी सेना, ये सेना बाप को और चक्र को याद करती है, हम सेना क्या करती है, बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। हथियार आदि नहीं है, सेना कहलाते हम, लेकिन कोई हथियार नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, इसका मतलब ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और दूसरों को बनाते हैं, सर्विस करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। क्यों भूल गए शिव बाबा को? क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गीता में। अब श्री कृष्ण को तो सब बाप नहीं कहेंगे, वर्षा तो बाप से मिलता है ना। पतित पावन बाप को कहा जाता है। वो जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। तब तक कोई नहीं जा सकता शांति धाम जब तक बाप न आए। वो आए तभी शांति धाम में ले जाए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो, इतना सहज समझाते हो। वो समझते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा तो फिर मोक्ष मिलेगा। बाबा कहते हैं कितना माथा मारते हैं और तुम कितना सहज समझाते हो। क्या समझाते हो बोलो? पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे, वहां ही हम शरीर छोड़े। हाँ, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो ये समझते हैं, तो गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, उनका मुख गंगा में डाल देते। अभी मुख डाल दिया तो फट से मर जाएगा ना, क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाएगा तो मर जाता था। लेकिन फिर ये बंद करा दिया, पहले होता था बंगाल में। तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे वो मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, मुक्त क्या हुआ, आत्मा तो निकल गई। अब वो पवित्र तो बनी नहीं थी, तो कैसे वो स्वर्ग में जाएगी? वो तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचना नहीं रचते। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है, प्रलय हो गई, सब खत्म हो गया, फिर भगवान नई सिर बनाते। क्योंकि और धर्मों में तो यही मानते ना, भगवान सब कुछ खत्म हो गया फिर भगवान ने नई सिर बनाई। दुनिया कैसे बनाई वो क्या बताते, जो फर्स्ट टेस्टामेंट सेकंड टेस्टामेंट में आता है ये बाइबल में, कि पहले भगवान ने ये एक एक तत्व बनाया। एक एक तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच तत्व, पांच दिन लगाए भगवान ने पांच तत्व बनाने के लिए। फिर छठे दिन मनुष्य को बनाया, चेतनता उसमें डाली, तो छठे दिन। और इतना थक गया भगवान कि सातवें दिन सो गया। सातवें दिन वो उसको सैबथ डे मानते हैं, माना छुट्टी का दिन, हॉलिडे, तो इसलिए एक दिन छुट्टी मनाते हैं। भगवान ने भी छुट्टी मनाई थी। तो बाबा कहते ऐसी बात नहीं कि दुनिया थी नहीं और एक एक दिन एक एक मनाया फिर सातवें दिन छुट्टी की। हाँ, बाबा स्वर्ग बनाते हैं फिर आधा कल्प परम धाम में रहते हैं। तो इतना अंतर है ना, जो मनुष्यों की समझ और भगवान की के ज्ञान में। तो बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचना नहीं है। जैसे नहीं कुछ भी नहीं था और फिर एकदम से भगवान ने बनाया। क्योंकि कई प्रश्न करते हैं, भगवान ने एकदम से कैसे बनाया? तो ऐसे थोड़ी है, ऐसे ही आ जाएगा। फिर कहते गॉड पार्टिकल, वो गॉड पार्टिकल है, एक पार्टिकल बताते हैं, फिर उस गॉड पार्टिकल से सब निकला। एक एक जो जो भी प्लैनेट्स है वो सब निकले, सब ब्रह्मांड ऐसे बना, वो गॉड पार्टिकल एक बिंदु। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है उसमें से निकले, जड़ भी सदा ही है, चेतन भी सदा ही है, जड़ से चेतन नहीं आता है। और तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी नहीं रचना नहीं रचते हैं। तो ये सारा ज्ञान शिव बाबा हमें देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियां मिठू नहीं बनना है। हाँ, मैं तो संपूर्ण बन गया, इसमें मियां मिठू नहीं बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है, क्या साधन है? परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। अगर स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कोई उपास हो जाती है सहज। वो ये देह भी पर है, पर ये शरीर भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। स्वस्थिति माना आत्मा के मूल गुणों की स्मृति, उस स्मृति से स्थिति। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वो संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। जो स्वस्थिति में रहते हैं वो संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। व्यर्थ संकल्पों का बहाव आ जाता है, वो कैसे समाप्त होगा? परिवर्तन शक्ति से। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो आज बाबा ने कहा, लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही साथ है। हम अकेले नहीं है, बाबा हमारे साथ है, अर्थात तू ही तू है। हाँ, वो कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं कि बाप सदा साथ है, अर्थात तू ही तू है। हाँ, बाबा सदा तो मेरे साथ हो। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। बाबा मुझसे करवा रहा है तो हम करनहार है, वो करवा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। इसको कहेंगे कंबाइंड रूप की स्मृति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से हमारी मधुबन में बठिया शुरू हो रही है और उसके लिए हमारी खास गीता बहन नवसारी की पहुंची है। गीता बहन खड़ी होकर मुखड़ा दिखाओ। नवसारी की गीता बहन को सब जानते हैं ना? अब ये भट्टी संभालेंगी और कल से गुजरात, क्योंकि गुजरात बहुत पड़ोसी है दूसरे स्थानों के, तो फिर भाई बहनों को बहुत ट्रेन की टिकट बुक करानी होती है, पर गुजरात तो बहुत जल्दी आ जाता है। तो गीता बहन सबसे पहले पहुंची है और गुजरात आ रहा है कल से, देखना सुबह से ही आना शुरू हो जाएगा, भट्टी शुरू होगी मधुबन में। एक साल तो भट्टी नहीं हुई, लेकिन इस बार पूरी भट्टियां सितंबर तक भट्टियां पांडव भवन में। और विशेष सूचना दे रहे हैं, विशेष सूचना है, दो सूचनाएं हैं। ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी का दिनांक 8 तारीख को देहावसान के बाद कल ही 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की विशेष मीटिंग संपन्न हुई। कल बड़ी मीटिंग थी मैनेजमेंट कमेटी की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो दादी रतन मोहिनी जी थे। तो इस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि पहला नंबर क्या निर्णय लिया गया कि मुख्य प्रशासिका के पद पर आदरणीय बीके मोहिनी दीदी जी नियुक्त की गई है। ताली बजाएंगे मोहिनी बहन के लिए। तो मुख्य प्रशासिका के रूप में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी को नियुक्त किया गया है, और क्योंकि वो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका थी, अभी वो मुख्य प्रशासिका बन गई, तो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के पद पर आदरणीय बीके मुनी दीदी नियुक्त की गई है। तो मुनी दीदी के लिए भी ताली बजाएंगे। और बाकी तीन तो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ही है, एक हमारी संतोष दीदी और शशि दीदी और सुदेश दीदी, वो तो तीन है ही जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और जयंती दीदी तो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ही, वो तो है ही है, अभी वो गई हुई है ऑस्ट्रेलिया। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम था ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ओपेरा हाउस में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो इसीलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, तेज समाचार आ जाएगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात, एक गुड न्यूज आपको दे रहे हैं कि 17 अप्रैल आज क्या है 14, तो 17 अप्रैल 2025 को शांतिवन परिसर में इस वर्ष की थीम का राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन करना है। तो उद्घाटन करने के लिए भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तथा अनेक वीआईपी पधार रहे हैं, क्योंकि इस साल का हाथ तो ताली बजाएं जरूर, इस साल का थीम है कि यूनिटी एंड ट्रस्ट। तो यूनिटी एंड ट्रस्ट माना एकता और विश्वास का ये वर्ष है, तो उसके लिए उसका जो उद्घाटन है, तो भारत के जो गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तथा अन्य अनेक वीआईपी पधार रहे हैं। इस प्रोग्राम की विशेष जानकारी देने के लिए आज प्रातः 11 बजे दादी जी मीटिंग हॉल शांतिवन में विशेष मीटिंग रखी गई है। इसमें मधुबन के सीनियर भाई बहनों के अलावा सभी प्रभागों के पद अधिकारी और डिपार्टमेंट इंचार्ज सादर आमंत्रित है। जा सकते हैं आप नीचे मीटिंग हॉल में, 11 बजे मीटिंग रखी गई है 17 तारीख को बड़े प्रोग्राम के लिए, जिसमें उद्घाटन होगा इस साल के थीम का। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और फिर समाप्ति करेंगे। ओम शांति।